हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रुमीजा रब है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी की हिंदी की पुस्तक प्रबोधिनी का पाठ सात, दीपदान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑडियो में हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इस ऑडियो में हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पाठ के माध्यम से लेखक अपन को क्या बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के पाठ को पढ़ते हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप भी पाठ को साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको आसानी हो पाठ को समझने में और पढ़ने में। चलिए स्टूडेंट, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 52। चंदन चौंक कर माँ आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वे काली छाया, काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी, करुण स्वर में गीत गुनगुनाती हुई। तो यहाँ पे जो चंदन, जो उसका बेटा है, वो बोलता है कि माँ, मैं आपकी सारी बातें जो थे आप जो बता रही थी कि हाँ, चित्तौड़ के महाराजाओं के बारे में सोचो, चित्तौड़ के इतिहास के बारे में सोचो, मैं वो सब सुन रहा था आँख बंद करके, लेकिन मुझे लगा कि एकदम से कोई काली छाया मेरे पास आई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, वो मुझ पर तलवार उठाने की कोशिश कर रही है। तो माँ, आप ये मुझे बताएंगी कि ये काली छाया कौन थी, क्या थी। पन्ना है, वो बोलती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं था, कौन आएगा यहाँ पे, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ ना। तो चंदन बोलता है, माँ मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। तो पन्ना बोलती है, बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी, तुम अपने आप सो जाओगे। तो वो गीत गाती है, लोरियाँ सुनाती है, गुनगुनाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर से पुकारती है चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर जोर से सिसकी लेकर रोने लगती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंदा में सुला दिया कि अब ये ना उठेगा। सिसकियाँ लेती है, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, तू समीणी है जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियाँ लेती है फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला में नहीं गूंज सकी, तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है, तुम्हें माला कैसे पूरी करती। तो यहाँ पे पन्ना का जैसे ही गीत ख़त्म होता है, लोरियाँ सुनाती रहती है, वो गीत गाती रहती है, जैसे ही उसका गीत समाप्त होता है तो वो देखती है, वो बोलती है कि चंदन, तो देखती है कि चंदन सो गया है, तो वो चंदन से दूर हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। वो अपने आप को कोसती है कि मैं कैसी माँ हूँ कि ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मैं खुद उसे मौत के मुंह में धकेल रही हूँ, उसे खुद उस जगह पर लिटा रही हूँ जो उसकी मौत ले लेगा, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने ही बेटे को खा गई, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेटा चांद सा उसे मैं खा रही हूँ, मैं कैसी माँ हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे दिल को इतना पत्थर दिल बना दिया कि मुझे अब अपने ही बेटे की जान जा रही और मैं ऐसी हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 53। सिसकियाँ, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करते हैं, कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं जब किसे खिलाऊंगी चंदन, सिसकियाँ लेते हुए रोती हुई, तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे, मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने भक्त को खा रही हूँ, सिसकियाँ लेते हुई। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान आज जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूँ, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियाँ लेते हुए यकायक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। तो यहाँ पे जो पन्ना है, धायमा है, वो बोलती है, मेरा पुत्र कितना अच्छा है, मैं उसे आखिरी दिन भी, आखिरी समय भी पेट भर खाना नहीं खिला सकी। मैं कैसे खिलाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बेचारा कह रहा है कि मैं दूसरे दिन खाऊंगा, वो भी कुंवर के साथ, जब आप खिलाएंगी। वो ये नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी में अब दूसरा दिन नहीं होगा। उसकी माला भी मैंने नहीं गुथी, क्योंकि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। मैं क्या करूँ, मेरा बेटा यहाँ पे ऐसे ही अपनी जान के मुँह में लेटा है, मतलब उसकी जान जाने वाली है। उसके पैर में चोट लगी, थोड़ा सा रक्त बहा, तो मैं इतनी चिंतित हो गई थी, मैं इतना टेंशन ले रही थी, मैं इतना क्रोध कर रही थी। लेकिन अब उसके हृदय से भी खून बहेगा और वो इस जीवन में सो जाएगा किसी और जीवन में उठने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। भगवान मेरी कैसी शिक्षा ले रहे हैं, कैसी चेतावनी दे रहे हैं, और साथ साथ मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। उतने में ही स्टूडेंट भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है और बंदी तलवार लेकर आता है। चलिए स्टूडेंट, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 53। बनवीर, पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धायमा है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। हे धायमा की आंखों में आंसू, पन्ना नहीं, आंसू नहीं, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए हैं। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत भारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वे जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है, जिंदगी भर के लिए, तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धायमा हो ना आज पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वे कुंवर उदय सिंह को और धायमा को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वे आई थी, शायद तुम ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर का मन नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर जी, अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौर का कल्याण करेंगी। वे भी चित्तौर का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मेवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, 100 लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर ना होगा। तुम ही देवी होगी और उस मंदिर में तुम ही देवी होगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो पन्ना है उसे बनवीर बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ उस धायमा से मिलने, जो धायमा सारे राजपुतानों में बहुत अच्छी धायमा है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि धायमा की आँखों में ये पानी कैसे, ये आंसू कैसे। तो पन्ना बोलती है, ये आंसू नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज मेरे कुंवर बिना खाए सो गए। तो बनवीर बोलता है, आज कुंवर बिना खाए सो गए, आज तो बहुत बड़ा उत्सव था हमारे नगर में, आज तो लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने मेरे साथ खाना खाया है, आज तो कीरत की टोकरी भी पत्तलों से भर गई है, तो आज कुंवर उदय सिंह क्यों बिना खाए सो गए? चलो मैं उन्हें खाना खिला देता हूँ, चलो मुझे बताओ कुंवर कहाँ है। तो पन्ना बोलती है, नहीं, वो आपके कहने से नहीं उठेंगे, वो तो मेरे ही कहने से उठते हैं। पन्ना से जब बनवीर बोलता है कि उनने खाना भी नहीं खाया और आपने दीपदान भी नहीं किया, तो वो बोलती है, दीपदान करने से नहीं, दीपदान देने से मैं अच्छा मानती हूँ, दीपदान करने को नहीं। और हाँ, वो सोना भी नाच गा रही थी आज, उसने भी बहुत अच्छा नाच गाना किया। आज वो आई भी थी कुंवर को दिखाने, लेकिन कुंवर की मन नहीं था, कुंवर का मन अच्छा नहीं था, मतलब कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उसने ये सब नहीं देखा और वो चली गई। तो बनवीर बोलता है, अच्छा है आपने दीपदान नहीं किया, लेकिन मैं आपको कोई एक क्या देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स बताइए, मैं आपको कोई दहलीज मतलब कि कोई बहुत अच्छा उपहार देना चाहता हूँ। वो आपका उपहार ये है कि मैं तुलजा भवानी की जगह आपका मंदिर बनाऊँगा और लाखों लोग हजारों लोग आपकी पूजा करेंगे। आप ये चाहती हैं, अगर मेरे उपहार को आप स्वीकार करती हैं तो आप बताइए, आप कुंवर को मुझे दे दीजिए और ये जो उपहार है उसे स्वीकार कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 54। चीख कर बनवीर, बनवीर महाराज, बनवीर ने ही कहा, मेरे कहने पर भी तुम देवी बन गई? महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी, हंसता है, देवी को प्रणाम, देखो अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा, तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और उसे ये तलवार मैं दे दूंगा। पन्ना चीख कर बोलती है, तो जो बनवीर होता है वो बोलता है कि तुम मुझे बनवीर बोल रही हो, मैंने सिर्फ तुमसे ये बोला कि मैं तुम्हें तुलजा भवानी की जगह तुम्हारी मूर्ति बनवाऊंगा, एक मंदिर बनवाऊंगा तुम्हारा, लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुमने अपने आप को देवी मान लिया। चलो अगर तुमने देवी मान ही लिया है, हंसते हंसते बनवीर बोलता है, तो अब तुम मोहमाया से दूर रहना, तुम मेरे और कुंवर के बीच में नहीं आना, तुम कुंवर को मुझे सौंप दो और कुंवर को मैं ये तलवार ऐसा उपहार में दूंगा और तुम कुंवर और मेरे बीच में नहीं बोलोगी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 54 पे तलवार खींच लेते हैं। पन्ना, ए ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वे आनंद सुहाग से भरी है, ये तो उन्हें सिंदूर की रेखा है, बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? ये तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता, ढाई माह होने पर तुम में इतनी ममता भर आई कि तलवार नहीं देख सकती? पन्ना बनवीर से बोलती है कि इस तलवार पे रक्त क्यों लगा है, तो बनवीर जवाब देता है कि रक्त जो होता है मतलब खून जो होता है वो तलवार की शोभा होती है, वो तलवार का सिंदूर होता है, मांग होती है, उसकी पहचान होती है, और तुम कैसी धायमा हो, तुम्हारे अंदर इतनी ममता आ गई है कि तुम रक्त नहीं देख सकती, तुम खून से लथपथ तलवार नहीं देख सकती, और चित्तौड़ के लिए तो ये अच्छी बात है, चित्तौड़ वाले कब से तलवार से डरने लगे, और तुम तलवार देख के ऐसा क्यों कह रही हो कि इसमें रक्त क्यों लगा है, ये तो हमारे लिए आम बात है, ये हमारे तलवार की पहचान है, आन बान शान है। फिर बनवीर की जब ये बात सुनती है पन्ना, तो पन्ना बोलती है कि तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो, मतलब सही से रखो, उसे ज़्यादा इधर उधर घुमाओ फिराओ नहीं, ज़्यादा इतराओ मत, ज़्यादा हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बनवीर बोलता है, तुम्हें डर लगता है क्या? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता, ये तो तुम जानती ही होगी, और अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम, मुझे लगता है कि तुम ऐसी धायमा बन गई हो, ऐसी पन्ना बन गई हो कि अब तुम्हारे दिल में सिर्फ ममता रह गई है, तुम तलवार को देख भी नहीं सकती हो, इसलिए तुम अपने दिल को अपने मन को कठोर बनाओ, थोड़ी अच्छी बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पन्ना आधी रात हो चुकी है महाराज। बनवीर विश्राम करो। बनवीर विश्राम मैं करूं? बनवीर जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना यह नहीं होगा महाराज। बनवीर बनवीर जागीर नहीं चाहती। पन्ना नहीं। बनवीर तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वो दिया जाएगा। पन्ना राजपुतनी व्यवहार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि में चढ़ती हैं या फिर चिता पर। बनवीर तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना सैनिकों को किसने आज्ञा दी महाराज? विक्रमादित्य। बनवीर बीच ही में, वे अब संसार में नहीं रहे। पन्ना उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना ओह बनवीर हत्यारा बनवीर। बनवीर महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती, हत्यारा कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराज विक्रमादित्य के हत्यारे। तो यहाँ पे जो पन्ना है वो बोलती है कि बहुत रात हो गई है, मतलब बहुत समय हो गया है, अब आपको महाराज मनवीर आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो वो बोलता है मैं विश्राम कैसे करूँ, मैं आराम कैसे करूँ, मुझे लक्ष्मी को पाने की और गद्दे को, सिंहासन को पाने की इतनी जल्दी है कि अब मैं आराम नहीं करूँगा, मैं तभी आराम करूँगा जब मुझे गद्दी मिल जाएगी। तो वो बनवीर पन्ना से बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें मंदिर चाहिए, या तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे कुंवर को दे दो, कुंवर उदय सिंह को मेरे हवाले कर दो, और तुम अगर कुंवर को नहीं दोगी हमारे साथ तो फिर तुम जान लेना। तो वो बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मेरी मूर्ति बनवाना है, ना मुझे कोई और चीज़ चाहिए, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। और हम जो राजपूत लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, या तो हम चिता की आग में जल जाएंगे, लेकिन हम अपने ईमान को, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसे बेचते नहीं हैं, जो एक बात कह देते हैं वो कह देते हैं, और हम थूक के चाटने वाले लोगों में से नहीं हैं कि मैंने कह दिया फिर कुछ और करूं और कहूं कुछ और, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बनवीर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम क्यों पगला रही हो, तुम ये जानती नहीं हो कि महल को चारों तरफ से किसने घेर लिया है, सिपाहियों ने घेर लिया है, तुम यहाँ से बच के निकल भी नहीं पाओगी, तुम क्या करोगी बताओ, क्या कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। तो वो बोलती है क्यों महाराणा विक्रमादित्य के सिपाहियों ने, तो बोलता है नहीं नहीं ठहरो, उनके सिपाहियों ने नहीं मेरे सिपाहियों ने, वो तो दुनिया में रहे ही नहीं, उनको तो मैंने दुनिया से ऊपर उजा दिया है, वो इस संसार में नहीं रहे, वो इस संसार से अलविदा हो गए हैं और उनका रक्त मेरी तलवार पे लगा है। तो वो बोलती है क्यों तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे बनवीर हो। तो वो बोलता है कि कोई मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, चित्तौड़ की धरती पे, जो मुझे हत्यारा बोले, जो भी मुझे हत्यारा बोलेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। तो पन्ना बोलती है लो मेरी जीभ काट दो, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 55 आपकी पुस्तक का। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो, प्रेतों और पिशाचों के वे नाम लेने दो, यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर बोलता है कि तुम हमेशा और बार बार मेरे सामने महाराणा विक्रमादित्य का नाम क्यों ले रही हो, वो उनका नाम तो गरीब लोग लेंगे, जो उनकी अस्थि को लेके जाएंगे वो लेंगे, तुम चुप रहो, मेरा नाम लो और वो भी जय जयकार करो मेरी। तो पन्ना बोलती है तुम पे धिक्कार है, तुम्हारी जय जयकार करने से पहले मैं मर ना जाऊँ, तुम पे धिक्कार है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा होती साथ मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम जैसा मनुष्य मैंने आज तक इस धरती पे नहीं देखा, जो इतना स्वार्थी हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जो राज गद्दी के बारे में सोचता हो, जो किसी की भी जान ले सकता हो, किसके लिए, राज गद्दी के लिए, राजा बनने के लिए, ऐसा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बनवीर, चुप रहे धाय, बच्चे की पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है, कहाँ है उदय सिंह। पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। तो जो बनवीर है वो बोलता है कि तुम चुप रहो, एक रखेल जैसी औरत जो दूसरों को खिलाती है, दूसरों की सेवा करती है, दूसरों को कहानियाँ सुनाती है, वो मुझसे महाराणा से बात कर रही है, मुझ जैसे राजा से, राजा बनवीर से बात कर रही है। तो वो बोलता है कि तुम चुप रहो और मुझे ये बताओ कि कुंवर कहाँ है, कुंवर उदय सिंह कहाँ है। तो पन्ना बोलती है कि तुम उसे छू भी नहीं सकते और महाराणा की मृत्यु के बाद तो तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। स्टूडेंट्स, किसे नहीं देख पाओगे, उदय सिंह को, मतलब कुंवर उदय सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह कूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के रंग थे, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिन हो जाऊंगी, तीतों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोदी में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर मुझे ये भिक्षा दे दो। बनवीर जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ अब किसे चाहता हूँ, मेरे सामने सिर्फ मैं कुंवर उदय सिंह को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो विक्रमादित्य खून से मतलब लहू से जो ये तलवार सनी है वो तभी शांत होगी, तभी धुलेगी जब मैं उदय सिंह के रक्त ले लूँगा, मतलब उसकी हत्या कर दूँगा। तो पन्ना बोलती है, कैसे हो तुम, कैसे स्वार्थी हो, कैसे क्रूर हो, तुम्हारे बदन में दिल नहीं है क्या, तुम्हारे हृदय में दिल नहीं धड़कता क्या, तुम कैसे हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ कि तुम उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेके कहीं दूर चली जाऊँगी और तुम्हें दिखाई भी नहीं दूँगी। तुम अपना राज करो, सिंहासन करो, लेकिन मेरी गोदी से मेरे लाल को मत छीनो, मतलब कुंवर को मत छीनो। चलिए आगे देखते हैं। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, जब तक वे जीवित हैं तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शस्या से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को छुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वाहरी धायमा, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है, शस्यक से दूर हट। पन्ना, मैं उसे चीर निंदा से सुला दूं। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कूर नारगी, ले मेरी कठार का प्रसाद ले। बनवीर, हा 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 हा, दासी कर दिया कटार का वार, ये कटार मेरे हाथ में है, अब किसने वार करोगी, अब मुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाता मैं। पन्ना, अब रोज सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धुतकारता। बनवीर, यही है मेरे मार्ग का कटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीप का दान करूँगा। यमराज तो इस दीपक को, यह मेरा दीपक है। तलवार से उदय सिंह के धोखे से चंदन पर जोर से प्यार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मुखरचित हो जाती है, कमरे में बंद लोह का दीपक जलता है। तो यहाँ पे बनवीर के सामने जब जो पन्ना है, धायमा है, वो बोलती है कि तुम मुझे में भीख दे दो, मुझे भीख क्या दे दो, उदय सिंह की जान दे दो, उसकी जान मत लो। तो जो बनवीर है वो बोलता है कि तू हट जा, मुझे तेरे नाटक नहीं सुनना, तू एक आम औरत मुझसे ये सारे सवाल कर रही है, यहाँ से तू चली जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तो सिर्फ अब रक्त चाहता हूँ उदय सिंह का, और तभी मैं पहली सीढ़ी चढ़ सकूँगा अपने राज सिंहासन की, जब उसको मार डालूँगा। तो फिर पन्ना उसे जाने से रोकती है कि वो कुंवर के पास नहीं पहुँचे। तो वो बोलता है, वाह, तेरी ममता की तो कोई मिसाल ही नहीं दे सकता मैं, तेरी ममता का तो कोई उदाहरण ही नहीं दे सकता मैं, कि तूने कुंवर को सुला दिया है और उसका मुंह भी ढक दिया है ताकि उसे मौत की, मृत्यु की तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, तेरी ममता क्या है। तो वो उस पर हमला करती है, प्रहार करती है, तो वो फिर से बच जाता है, कौन, बनवीर। और बनवीर बोलता है, अब तू कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरे भी प्राण ले लूँगा, लेकिन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। और वो एकदम से क्या करता है, तलवार लेके कूदता है चंदन की तरफ और चंदन के ऊपर घोंप देता है, और जो पन्ना है वो ज़ोर से चिल्लाती है। तो स्टूडेंट, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी का जो शीर्षक है, मतलब कि दीपदान, वो इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे पन्ना ने अपना जो दीप था, मतलब जो उसका चांद था, चंदन था, उसको दान दे दिया था, किसके लिए, राज सिंहासन के लिए, एक वादे के लिए, वादे को निभाने के लिए, इसलिए इसका जो शीर्षक है वो दीपदान रखा गया। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 56। चित्तौड़ का राजकुमार पत्तले ओढ़ कर सोएगा, कौन जानता था वे राजकुमार कौन है। स्टूडेंट, इसका उत्तर खा होगा, उदय सिंह, क्योंकि राजकुमार तो उदय सिंह था, उसी के बारे में पूरी कहानी है, ये मैं आपको इतनी देर से बता ही रही हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 2। मेरे दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है, पंक्ति में दीप से आशय है। स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा गा, चंदन। क्योंकि वो दीपदान देखने नहीं गई थी। कौन नहीं गई थी? पन्ना नहीं गई थी, बल्कि उनने अपने खुद के बेटे चंदन को दान दे दिया था, दान दे दिया था, बलिदान कर दिया था उसका। ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आपकी पुस्तक का प्रश्न नंबर 3। महाराणा सागा के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? बताइए, महाराणा सागा के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था स्टूडेंट? कुंवर उदय सिंह था, क्योंकि जो कुंवर उदय सिंह है उन्हीं के ऊपर पूरा पाठ लिखा गया है, पूरा पाठ उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं की कहानी है, कैसे उनके ऊपर हमला हुआ, कैसे उनकी जान बचाई गई, कैसे चंदन को किसने, बनवीर ने मार दिया कुंवर समझ के, ये सारी कहानी इस पाठ में दी गई है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कुंवर उदय सिंह है और वो चित्तौड़ के उत्तराधिकारी हैं, वो आने वाले क्या हैं, महाराजा हैं, और वो अब आखिरी कौन है, राजपूत खून है, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, इस वाक्य में किसने किसको चित्तौड़ का सूरज कहा है, लिखिए। तो स्टूडेंट, इस वाक्य में जो पन्ना है, जब कुंवर उदय सिंह गुस्सा हो जाते हैं कि आप मुझे कहीं जाने नहीं देती हैं, आप मुझे नाच गाने देखने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बाहर जाने नहीं दे रही हैं, तो जो पन्ना है वो बोलती है कुंवर उदय सिंह से कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम तो दीपक हो, सूरज हो, और क्या हो स्टूडेंट, चित्तौड़ के सूरज हो और रात में दीपक हो। तो ये सारी चीज़ से बोलकर वो उसे फुसला भी रही थी और उसे बता भी रही थी कि वो चित्तौड़ के आने वाले महाराजा हैं, इसलिए वो बिना सैनिकों के, बिना सेफ्टी के या बिना अच्छी सुरक्षा के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी उन पे हमला कर सकता है और उनके प्राणों को खतरा है। चलिए स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 56 आपकी पुस्तक का और प्रश्न नंबर 5। चित्तौड़ रांग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, आप देख ही रहे, पूरी कहानी में खून खराबे के बारे में बात कही है, हत्या हो रही है कहीं विक्रमादित्य की, कहीं चंदन की। तो आप इससे लिख सकते हैं कि जो चित्तौड़ है वहाँ पे हमेशा से ही राजगद्दी पाने के लिए एक दूसरे में जो होड़ थी, एक दूसरे में जो जलन थी, उसने एक दूसरे की जान लेने पे मजबूर कर दिया। वहाँ पे नाच गाना कम होता था और एक दूसरे की जान ज़्यादा ली जाती थी, लहू ज़्यादा बहता था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इम्पॉर्टेंट ये जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, ये आप इसमें लिख दिएगा। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6। दीपदान एकांकी के नामकरण की समर्था सिद्ध कीजिए। तो अभी स्टूडेंट, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि दीपदान जो है वो इसलिए रखा गया है कि पन्ना ने अपना जो चंदन है, जो दीप है उसका, जो उसका दीप है मतलब जो चंदन है, उसका दान दे दिया था, उसको बलिदान कर दिया था, उसको इसलिए कर दिया था क्योंकि वो कुंवर को बचाना चाहती थी और वो बनवीर को पागल बनाना चाहती थी। कुंवर को बचाकर एक ही वो ऐसे क्या थे, राजपूत खून थे जिन्हें वो बचाना चाहती थी, क्योंकि बनवीर जैसे कूर को वो महाराजा नहीं बनाना चाहती थी और ना वो चाहती थी कि बनवीर को वो अपना महाराजा माने, इसलिए वो उनने ये सारी चीज़ें की। इसलिए इस पाठ का जो नाम है वो दीपदान रखा गया। इस पाठ के और भी नाम रख सकते हैं स्टूडेंट आप, जैसे कि बलिदान हो गया, कुंवर उदय सिंह की कहानी हो गई, चंदन की मृत्यु, बनवीर की क्रूरता, ऐसा मतलब अलग अलग चीज़ें जो भी आप सोचें इस पाठ को, जैसे जैसे पढ़ेंगे आप समझेंगे, तो आपके मन में भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत से ऐसे ख्याल आएंगे कि इसका ये भी शीर्षक हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्न मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा, आँखों का तारा तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स, आँखों का तारा मतलब होता है कि कोई बहुत ही मुख्य चीज़, वो चीज़ जो आपको बहुत ही पसंद हो, जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरे माता पिता मेरे आँखों के तारे हैं, ऐसे मतलब जो बहुत ही मुख्य चीज़ होती है किसी इंसान के या किसी भी जो मनुष्य है उसके जीवन, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। जो दूसरा है इसमें, बाल भी बाका ना होना, बाल भी बाका ना होना मतलब कि कोई भी चोट नहीं लगना या कुछ भी नहीं होना, जैसे कि मान लो राजू और रोहन दोनों जंग में गए या दोनों युद्ध में लड़ने गए, लेकिन राजू का बाल भी बाका नहीं हुआ, उसे कोई भी खरोच नहीं आई, ये सारी चीज़ें। चलिए इसी में तीसरा है, आँखों में पानी आना। आँखों में पानी आना मतलब रोना। तो इसको आप दो तीन तरीके से इसमें आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं जब प्रथम आई तो मेरे आँखों में पानी आ गया, ये सारी चीज़ें। आप इसको पाठ से भी कर सकते हैं, जैसे पाठ में दिया गया है कि चंदन की बात सुनकर जो पन्ना थी उसकी आँखों में पानी आ गया। चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8, बनवीर कौन था परिचय दीजिए। बनवीर जो था वो दासी पुत्र था जिसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। और उसके बारे में जो जो चीज़ें आपने पाठ में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, धायमा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं, लिखिए। क्योंकि उनने बहुत ही अच्छा काम किया था, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनने उन्हें महान बनाया। पहली चीज़, कुंवर की सहायता करना। सहायता कैसे, उसकी जान बचाना एक बहुत अच्छे तरीके से, जो उनने सोचा कि हाँ वो ऐसा करेंगी, वो इसके साथ भेज देंगी, वो पत्तलों में उसको ढक देंगी, ये सारी चीज़ें। दूसरी, अपने बेटे चंदन का, अपने लाल, अपने जिगरे के टुकड़े का क्या करना, क्या कर देना स्टूडेंट्स, बलिदान दे देना उसको, कुंवर की जान को बचाने के चक्कर में उसको खो देना। और भी बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 10, महल में धायमा अरावली बनकर बैठ गई हैं, वाक्य क्या, उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि उसके वजह से, सिर्फ धायमा के वजह से वो लोग कुंवर उदय सिंह को क्या नहीं पहुँचा पा रहे थे, कुछ हानि नहीं पहुँचा पा रहे थे, क्योंकि हमेशा धायमा कुंवर को बचा लेती थी, और वो कुंवर को क्या कर रही थी, एक तरीके से बचा के अच्छे तरीके से क्या कर रही थी, पाल परोस रही थी। और ये दूसरे लोगों को, बनवीर को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, और सोना को भी, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, वो लोग राज करना चाहते थे, इसलिए वो पहले कुंवर को मार देना चाहते थे। चलिए प्रश्न नंबर 10, बनवीर की आँख की कलियों तुम्हारी पीछे काली राख है ये मत भूल जाना, इन पंक्ति में सप्रश व्याख कीजिए। उसमें ये बोला गया है कि हमेशा इतने क्रोध में नहीं रहना चाहिए कि आप सब कुछ भूल जाएं, जैसे कि बनवीर ने किया है। बनवीर ने राज सिंहासन पाने के लिए सब कुछ भूल गया, उसने सबका कत्ल कर दिया, लेकिन वो ये जान भी नहीं पाया कि उसने चंदन को मारा है, ना कि कुंवर को। स्टूडेंट आप इसमें और भी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं जो जो आपको पाठ से समझ में आई हैं। तो स्टूडेंट ये पाठ यहीं समाप्त होता है, तब आप अपन मिलेंगे अगली ऑडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।